जय मां। अक्सर हमने देखा होगा, आजकल एक बात सर्कुलेट हो रही है कि हिंदू इतना डिवाइडेड क्यों है। तो उसका उत्तर ये है कि वैसे कई लेवल्स के उत्तर हैं, और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है ये शुरू से। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष में हम दो विरोधात्मक टेंडेंसी देखते हैं। एक और हिंदू के अंदर पूरे विश्व को अपने अंदर समेट लेने की और एक हो जाने की संभावना है। केवल संभावना नहीं है, प्रकट हुई है। और चूंकि ये संभावना अंदर में इतनी विशाल, इतनी अपार है, इसीलिए उसकी शैडो, जहां आप देखेंगे खंड खंड, प्रांत प्रांत, कास्ट क्रीड, किन किन चीजों पर वो बटा हुआ है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो माता जी इसको शैडो की बात करती हैं कि हर व्यक्ति जिसके अंदर उच्चतम संभावना होती है, उसके अंदर उसकी निम्नतम कठिनाई, जो नीचे से नीचे बिल्कुल उठती हुई वो कठिनाई। इसीलिए भारतवर्ष में हम देखते हैं कि राम भी हुए, रावण भी हुए, कृष्ण भी आए, साथ में कंस इत्यादि भी आए, श्री अरविंद आए। इस बार भारत में तो खैर एक अलग चीज़ चल रही थी, पर उस समय हिटलर वगैरह, हिटलर के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो पैदा भारत में नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर भारत के स्वास्तिक, सुपरमैन, इन सब चीज़ों का कंसेप्ट था। वो चाहता यही था कि भारत का ऑकल्ट ज्ञान अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपराजित बन जाऊँगा। तो ये भारतवर्ष के अंदर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चली हैं, क्योंकि उच्चतम संभावना है। तो इसका फिर क्या लेना देना है हमारे नई सृष्टि से जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम नई सृष्टि की ओर बढ़ते हैं तो पहली चीज हमको स्मरण रखनी है कि नई सृष्टि किसी बाहरी उपाय, प्रोग्राम इससे नहीं बनाई जाती है कि हमने एक मैप बना लिया। कई लोग होते हैं कि चलो एक स्कूल खोल दो माता जी के नाम पर, एक सेंटर शुरू कर दो, ये सब ठीक है, आप कर सकते हैं इसको, ये नहीं कि कोई चीज मना है, लेकिन ये आपको कठिनाई तब तक आएगी जब तक आपने अपने अंदर किसी चीज को नहीं चेंज किया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेवलेशन है आश्रम के विषय में, जब आश्रम पर अटैक हुआ था 1965 में, तो एक और तो माता जी ने ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि आश्रम को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सुप्रीम लॉर्ड की विल से आया है, और जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, सुप्रीम नहीं चाहेंगे, तब तक इसको कोई चीज इसको डिसॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही माँ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज दिया था। माँ एक जगह कहती हैं कि हम लोग एक ऐसे उच्चतम आइडियल की ओर अपेक्षा करते हैं, उसकी ओर अभिप्सा करते हैं, जिसको साधारण व्यक्ति सहजता से समझ नहीं पाता। और फिर वो कहती है कि हमारी कई डेफिशिएंसीज हैं। फिर वो बताती हैं कि ये डेफिशिएंसीज कैसे ठीक होंगी। अक्सर लोग कहते हैं आश्रम में ये समस्या है, वो समस्या है, या श्री अरविंद से जुड़े हुए ग्रुप हैं, सेंटर्स हैं, उसमें ये समस्या है, वो समस्या है। तो माँ कहती हैं कि एक और तो इट इज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट द आश्रम बिलोंग्स टू द न्यू वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्टीज इट इज स्टिल कनेक्टेड विद द ओल्ड वर्ल्ड। फिर माँ सॉल्यूशन देती हैं, इट इज ओनली बाय ए कन्वर्शन ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। माँ ये नहीं कहती कि मैं एक जादू की छड़ी घुमा दूंगी और देखना सब ठीक हो जाएगा। वो सॉल्यूशन देती हैं, कन्वर्शन ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स टू द लाइट। यानी अब करना क्या होता है कि अब जब कोई कठिनाई आती है हमारे सामने जीवन में, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, बाहर की समस्या बता देते हैं, लेकिन वास्तव में हमको अपने ही अंदर देखना है, ब्लेम करके नहीं। ब्लेम और गिल्ट ट्रिप, इसका योग से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन ये देख के कि कौन सी चीजें हमारे अंदर जो अभी सही नहीं है, और अगर हम उसको सही कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि बाहर की चीज ठीक होती जाएगी। यानी ये नवीन सृष्टि अंदर से बाहर की ओर जाती है, घर नहीं पहले बनाया जाता है, ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, जिसको लोग कहते हैं नहीं पहले मंदिर बना दो, फिर मूर्ति आएगी, फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको पहले प्राण प्रतिष्ठा अपने ही अंदर करनी है, भगवान की प्रतिमा की, प्रतिमा नहीं उनकी छवि की, उनकी उपस्थिति की, छवि भी नहीं उनकी उपस्थिति, प्रतिमा छवि से माध्यम है। उसके बाद उसके प्रभाव और प्रताप से चीजें बाहर की ओर प्रकट होना शुरू होंगी। और इसका मैं भारत के वर्तमान पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में भी ये चीज बता सकता हूं कि लोग कहते हैं 500 वर्ष तक राम मंदिर नहीं बना, क्यों नहीं बना? हम मंदिर बाहर बना रहे थे लेकिन हमने अपने हृदय में स्थापित नहीं की थी। लेकिन 2000 कुछ 14 कह लो या कुछ थोड़ा पहले से, खासकर 14 से, एक भारतवर्ष के अंदर एक अद्भुत पुकार उठी, और वो पुकार उठी, हमारे अंदर ये अभीप्सा आई, वो चाहे पॉलिटिकल नैरेटिव भी उसका हो गया वो एक अलग बात है, और उस पुकार का परिणाम ये हुआ कि चीज़ें अपने आप बनती चली गई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात को समझना कि ये नवीन सृष्टि बाहर से नहीं बनती है, अंदर से बाहर की ओर जाती है। और आश्रम के बारे में तो माने स्पष्ट कहा है कि कभी कोई मेंटल प्लान नहीं था, और ये हमेशा चित तपस के द्वारा स्पॉन्टेनियसली चीज़ें यहाँ प्रकट हुई हैं। इसी बात को माँ बार बार संकेत कर रही हैं, क्योंकि यहाँ वो नई सृष्टि और नई अभिव्यक्ति की बात कर रही हैं। यानी हमको केवल बिल्डिंग नहीं बनानी है, उसमें लेक्चर हो जाएं, थोड़ी किताबें आ जाएं, सेल काउंटर आ जाए, यह नहीं उतना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो लोग वहाँ पर कनेक्टेड हैं वो सच में साधनारत हों, वो योगनिष्ठ हों, या मैं कहूँ कि मातृनिष्ठ हों। कहीं ना कहीं उस निष्ठा में जब दुविधा होती है तो समस्या होती है। अब माँ इसको बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं, उनकी एक एक प्रार्थना है। जून 15, 1914, प्रार्थनाओं का चुनाव करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ 19 जून तक, उसके बाद हम लोग थोड़ी स्किप करेंगे तो। पर प्रार्थना बड़ी सुंदर है जिसमें माँ एक मंत्र देती हैं हम लोगों को, इन्वर्टेड कॉमर्स। अब इन्वर्टेड कॉमर्स मतलब कि ये भगवान की वाणी है जो उन्होंने रिसीव की है, ये तो प्रेयर्स हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी और माँ एक माध्यम के रूप में हम लोगों को बता रही हैं, स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने यहां पर अज्ञान का आवरण ओढ़ा हुआ है। तो भगवान उनको कह रहे हैं, सुप्रीम उनको क्या कह रहे हैं, क्योंकि पिछली प्रार्थना में वो कहती है इट इज ए वेरिटेबल वर्क ऑफ क्रिएशन वी हैव टू डू। कैसे होगा, ये स्वाभाविक है ना मनुष्य, अरे हमको ये बनाना है, कैसे होगा, क्या होगा, कहां से धन आएगा, कहां से लोग आएंगे, पिछली बार हम लोगों ने इसकी बात की है। तो सोल्यूशन क्या उनको मिल रहा है, भगवान उनको कह रहे लाई क्रेडल्ड इन माई हार्ट एंड डू नॉट वरी, वॉट हैज टू बी डन विल बी डन, एंड इट इज जस्ट वेन यू डू विदाउट नोइंग इट दैट इट इज डन बेस्ट। ये हमको अपने घर में ये भी एक चीज लिख करके अपने हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए। पहला चीज, हमारा क्या काम है, हमारा पहला काम है भगवान के अंदर पूरी तरह शरणागति, क्रेडल्ड। कितना सुंदर शब्द है, क्रेडल्ड होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो पालने में उसको लिटाते हैं। अब पालने में क्या होता है, पालने में वो सुंदर स्वप्न देख रहा है, सुरक्षित है, पालना बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ना, जैसे माँ ने क्रेडल ऑफ सुपरमैन बताया, क्यों, क्योंकि नहीं तो वो गिर पड़ेगा, तो इसलिए उसको सुरक्षा के लिए पालना है। पालने में आप सब दे देते हो, खिलौना भी दे देते हो, वो भी दे देते हो, भोजन उसकी व्यवस्था है, डायपर भी चेंज होता है, बच्चा सब कुछ कर रहा है, लेकिन पालने के अंदर। तो हमको क्या करना है, लाइक क्रेडल्ड इन माई हार्ट, जो भगवान माता जी को कह रहे हैं इन हर ह्यूमन इनकारनेशन, वही चीज़ हमारे लिए माता जी के संबंध में लागू होती है। माँ हमको कह रही हैं क्या करना है, तुम इतने परेशान हो रहे हो, कैसे होगी चीज़ें, क्या होगा, माँ कह रही हैं लाइक क्रेडल्ड इन माई हार्ट। अब देखिए, अब हो सकता है हम लोग इसको अगर गहराई में जाएं, अगर गहराई में बिना जाए एक हरिड ग्लांस दें तो ये लगे हाँ बहुत सुंदर है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभवों में कहा जाता है कि भगवान सबके अंदर है और सब कुछ भगवान का है। यहां तक तो हम लोगों ने सुनी है बात, सब भगवान के अंदर है, भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, ये हम लोगों ने सुना है, हम भगवान के हृदय में निवास करते हैं, ये एक अद्भुत सत्य हमारे सामने प्रकट हो रहा है। और इस सत्य का आधार क्या है, क्योंकि यही सृष्टि के प्रारंभ की कथा है। इस कथा को पहले भी हम लोग बात किए, आपका ओरिजिन है, तो जैसे होता है ना बच्चा थक जाता है तो क्या करता है, माँ की गोद में सो जाता है। दीवार पिक्चर आई थी ना, अमिताभ बच्चन भगवान के मैं नहीं जाऊंगा अंदर, बड़ी कम्युनिस्ट स्टाइल की पिक्चर थी, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जब माँ की गोद में आता है, क्योंकि तू भगवान के पास नहीं जाएगा, भगवान माँ के रूप में आ गई है, और अगर वो भी रिफ्यूज करेगा तो धरती माँ की गोद में जाएगा, गोद ही से तो नहीं बच सकता है। यहां माँ कह रही है भगवान के हृदय में, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जब सारे देवता क्रिएट करने के लिए जाते हैं सृष्टि को बनाने के लिए, और वो करते करते उसमें आपस में धीरे धीरे खिंचाव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है और अंत में सृष्टि अंधकार में गिर जाती है। तो अंधकार से एक आवाज आती है कि सेव। अब सेकेंड लाइन ऑफ गॉड्स कम इन टू प्ले, SOS चला गया, तो सारे लोग, मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल बैठ के विचार करते हैं कि क्या किया जाए। सारे गॉड्स प्रकट होते हैं कि सृष्टि तो महाअंधकार में चली गई है, कौन जाएगा? तो वरुण, अग्नि और सोम, ये तीनों कहते हैं जाएंगे हम, लेकिन हम श्योर नहीं है कि हम ये काम कर पाएंगे, देवताओं को भी, क्योंकि पहले जो चार निकले थे जो मुख्य, वो जब महाअंधकार में चले गए तो फिर हम, आई कैन सी, वरुण कहते मैं देख रहा हूं कहां पर है सृष्टि, कहां गिर गई है। अग्नि कहते हैं मैं उसको जगाने का काम कर सकता हूं, और सोम कहते हैं कि मैं आनंद का स्पर्श देके धीरे 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 बाहर आएगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो डिवाइन मदर कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कैसे चलूंगी? मेरे हृदय के अंदर जो प्योरेस्ट लव है उसकी एक बूंद वो तुम्हारे साथ जाएगी। बोलते हाँ ठीक है, तब ठीक है। तो डिवाइन मदर के हृदय से जो निकलती है चिंगारी या अग्नि, शिखा, जो भी आप कहें, वही बाद में चैत्य सत्ता बनती है और वो साथ में आती, इसीलिए वह देव सेनापति है। देवताओं का सेनापति कौन है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कार्तिकेय, जिनको विश्वानार भी कहा गया, यानी ही इज द फायर दैट लीड्स द वर्ल्ड, इसीलिए वो सारी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ही इज कैपेबल, ही इज द लीडर ऑफ द मार्च ऑफ द जर्नी। ये पुराणों में अग्नि को ही कार्तिकेय का रूप दिया गया है, ये रमण महर्षि के बारे में कहा जाता है ना, अग्नि कार्तिकेय का अवतार थे। तो ये जो कार्तिकेय हैं, जो अग्नि है हमारे अंदर, उसके अंदर भगवान का एक अंश जो है, जो भगवान के ही अंदर निवास करता है, लेकिन वो उनसे हमेशा जुड़ा रहता है। हमारी साइकिक बीइंग एक सटल अम्बाइलिकल कॉर्ड से हमेशा जुड़ी हुई है। तो जब जीवन में कठिनाई आती, कंफ्यूजन आता है, प्रॉब्लम आती है, तो क्यों हम लोग गिव अप कर देते हैं? क्यों हम लोग अपनी उलझनों में पड़ जाते हैं? क्यों हम लोग ऐसा हो या वैसा हो, ये हो वो ना हो, इसमें हम चक्रवात में फंस जाते हैं। माँ क्या कहती हैं? लाइक क्रेडिल इन माई हार्ट। क्यों? क्योंकि वही हमारा स्थान है। और जब हम स्वयं को माता जी के हृदय में कुछ देर चले जाएं, तो पूरा रिजुविनेट होके आते हैं। तो ये एक मेडिटेशन भी है, हम लोग कुछ देर ही, केवल कुछ क्षणों के लिए, कि हम केवल माँ के हृदय में हैं, केवल माँ के हृदय के अंदर। हमारे अंदर माँ है, ये तो एक ट्रूथ है, हम माँ के हृदय में हैं, वही हमारा असली घर है, मूल तत्व है। वी आर लाइंग क्रेडल्ड इन द मदर्स हार्ट। अब फिर वहां पे हमको क्या भाव रखना है? डू नॉट वरी। कौन मूर्ख होगा जो भगवान की संगति में आके चिंता करे? चिंता कर रहा है, डाउट कर रहा है, मतलब वो भगवान में उसकी या तो श्रद्धा की कमी है या जुड़ा नहीं है। चिंता को श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में एक आसुरिक वेल्थ बताते हैं। वो बताते हैं नाना प्रकार के चिंता के पाशों से बंधे हुए, एंड डू नॉट वरी, भगवान के हृदय में डू नॉट वरी। फिर कैसे होगा, क्या होगा? व्हाट हैज टू बी डन विल बी डन। जो होना है वह होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कई बार बड़े निराशा के ढंग से बोलते हैं, अरे जो होना है वो होगा, यहाँ ये भाव नहीं है। देखिए वही शब्द हैं, भाव अलग है, यहाँ ये नहीं, अब जो होना है वो तो होगा। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से इस बात को कहा गया है, यहाँ पर उस सेंस में कहा गया है कि जो भगवान ने निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से संसार में होगा। यदि नवीन सृष्टि आनी है तो आएगी, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। What has to be done will be done, and it is just when you do without knowing it that it is done best. Do without knowing it. हम यह कर रहे हैं, हम माता जी का काम कर रहे हैं। अच्छा आप माता जी का काम कर रहे हैं, माता जी अपना काम कर रही हैं, और क्या पता उनसे कर रही हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो माता जी का काम कर रहे हैं। ये भ्रांति जो होती है मनुष्य के अंदर, ये भी भाव कि मैं मां का काम कर रहा हूं, यह भी भाव कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सारी चीजें अज्ञान है। भगवान अपना काम कर रहे हैं, और यदि वो हमारे थ्रू कर रहे हैं तो ये उनकी महिमा है और उनकी कृपा है, उनका प्रसाद है। हमें क्या करना है, उनकी शरणागति में रहना है, फिर वो काम होगा। कैसे होगा ये हम उन पर छोड़ दें। जहां प्लानिंग है एलैबोरेट, अक्सर लोग पूछते हैं कई बार, ये भी हमने इतनी किताबें लिखी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, इसको छपवाना है, कहां से हम छपवाएं, कैसे छपवाएं, हम कैसे ये प्रसारित करें। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हमारा ध्यान तो केवल ये होना चाहिए कि हम माँ के अंदर हैं कि नहीं है। तो यदि वो भाव रहे तो बाकी चीजें जो होनी है वो, कोई जरूरी नहीं कि व्हाट योर विशेज विल बी फुलफिल्ड, फिर वो क्राइटेरिया नहीं है। इट विल बी द वे द डिवाइन वांट्स इट टू बी, ये हमको याद रखना है। लाइक क्रेडल्ड, लाइक नेसल्ड, अरे वाह ये तो और भी सुंदर शब्द है, नेसल्ड। देखिए फॉर्मूला चुरा लिया नेस्ले वालों ने, जब बच्चा गोद में होता है तो उसको दूध देने के लिए, अरे बच्चे को लोग नहीं समझते, ये बाय द वे एसाइड, बट ये जरूरी है, इसका एक स्पिरिचुअल इंपैक्ट भी है। जो फॉर्मूला दूध है ये देखिए, ये वेस्ट क्यों नहीं समझ पाता है, ये छोटी सी चीज, उसमें आपको सारे तत्व मिल जाएंगे शायद, अपेरेंटली वो कहते हैं बेटर कॉम्बिनेशन में, हो नहीं सकता लेकिन चलो मान लिया। लेकिन क्या नहीं मिलेगा, मां की गोदी का सुख, मां से चिपक करके जो दुग्ध पान करता है बच्चा, उसका जॉय, क्योंकि वो केवल दूध नहीं पीता है, मां का प्यार पीता है। आप देखिए जब मां पिला रही होती है दूध, उसके हृदय में प्यार ममता उमड़ती है। कहते हैं कि दूध जो होता है एक्सप्रेशन होता है मां की ममता का। बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है ना, मां उसको देखती पुचकारती, उसके स्तनों में दूध आ जाता है बिल्कुल, बिकॉज शी फील्स दैट लव टू नरिश। वो नेस्ले के मिल्क में नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से कोई भी स्पिरिचुअल फॉर्मूला, टेक्निक, मेथड, ऐसे मेडिटेशन करो वैसे मेडिटेशन करो, इसका जो इसमें सब आपने टेक्निक सही करी, पर आप क्या भूल गए, माँ की गोद में जो माँ योग करती हैं आपके अंदर, माँ जो ज्ञान उड़ेलती हैं, उसका जो आनंद है, क्योंकि वो सूखा ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के साथ आनंद होता है, प्रेम होता है। तो लाई नेसिल्ड, नेसिल्ड मतलब पूरी शरणागति उनके अंदर, क्रेडल्ड फिर भी एक स्टेप बाद, नेसिल्ड। तो लाई नेसिल्ड इन माई हार्ट, ये शब्द मां पहले भी यूज करती हैं पहली प्रार्थना में, कि जब मुझे लगता है कि मेरे से कोई भूल हो गई है तो मैं क्या करती हूं। लोग गिल्ट में चले जाते हैं, रेक्टिफाई कैसे करें, अरे मनुष्य है, भूल होती है, आप क्या सिद्ध हो तो नहीं, भूल होती है, तो क्या करना चाहिए। मां कहती है इमीडिएटली आई फ्लंग माई सेल्फ एंड नेसल इन दाई हार्ट। तो ये बहुत बड़ा एक मेडिटेशन है ये अपने आप में। सहाना दी ने श्री अरविंद से कहा था, मुझे ध्यान वगैरह नहीं आता, मैं तो जब बैठती हूं तो मैं सोचती हूं केवल कि मैं मां की गोद में हूं। श्री अरविंद क्या कहते हैं, इट इज द बेस्ट पॉसिबल मेडिटेशन। लेकिन आप किसी को बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है। अगर यही टेक्निक से सिखाया जाएगा ना कि $1,000 दे के आपको मेडिटेशन के मेथड्स में से एक बताया जाएगा, नेस्लिंग मेडिटेशन, दिमाग से बताया जाएगा, अब इमेजिन करो कि माँ की गोद है, वाइट लाइट है, पिंक लाइट है, उसमें आप ऐसे लेटे हुए हो, रिलैक्स करो। अरे माँ की गोद में किसी को कोई बताना पड़ता है रिलैक्स करो? मुझे समझ नहीं आता, कई बार मैं सुनता हूँ माँ की गोद में अगर आप हो तो कोई बताएगा कि आप रिलैक्स कैसे करो? इमेजिन बच्चा माँ की गोद में है और दूध पी रहा है, आप उसको बोलेंगे देखो रिलैक्स, रिलैक्स योर सेल्फ? अगर बच्चा बोल पाएगा कहे मूर्ख चुप कर, डोंट डिस्टर्ब मी एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, आई एम मोस्ट रिलैक्स्ड, वाई? बिकॉज आई एम इन माई मदर्स लैप। सो नेस लाई, लाई नॉट मोमेंटरीली लेसे, लाई नेस्ल्ड इन माई हार्ट, शी इज ऑलरेडी नेस्लिंग। वो बार बार कहते हैं यही तुम करते रहो बाकी होगा, लाई नेस्ल्ड इन माई हार्ट एंड डू नॉट वरी। वॉट हैज टू बी डन विल बी डन, एंड इट इज जस्ट वेन यू डू विदाउट नोइंग इट दैट इट इज डन बेस्ट। क्या काम करते हैं आश्रम में? हम माँ की गोद में नेसल करते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद काम नहीं, नहीं ये वो होता है, कैसे होता है हमको भी नहीं पता चलता कैसे होता है, ये हमारा भाव होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो हम लोगों के लिए एक परफेक्ट एक मंत्र सूत्र दे दिया माँ ने। ये सारे जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, ये माँ के सूत्र हैं, योग सूत्र हैं, इसको भी कलेक्ट करके कहीं पर हमको रखना चाहिए। आई एम इन thy हार्ट ओ लॉर्ड एंड नथिंग कैन टेक मी अवे फ्रॉम इट। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनको भगवान बाहर से घर देते हैं, आश्रय देते हैं, वो भगवान को बहुत ग्रेस है, ग्रेस है कहते हैं। एक होते हैं जिनका ये सब छीन लेते हैं। मैं साधकों की बात कर रहा हूं। तो अब देखिए गीता में एक वर्ड है अनिकेत, जिसका घर नहीं है, ये नहीं कि उसका फिजिकल कोई घर नहीं है, होगा फिजिकल घर, होगा कहीं तो वो रह रहा होगा, इवन अगर वो पेड़ के नीचे है तो कह सकता ना मेरा घर है, लेकिन उसका वास्तविक घर कहाँ है? माँ के हृदय में। उस घर से उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो माँ कहती है यही हमारा भाव होना चाहिए कि हम माँ के ड्वेलिंग के अंदर हैं, उस घर से तो कोई छीन नहीं सकता। आई एम इन thy हार्ट ओ लॉर्ड एंड नथिंग कैन टेक मी अवे फ्रॉम इट। बस यही देखना है कि कोई पूतना आके हमको, अरे रे मेरे पास बेटर मिल्क है, ये सारे पूतना से ही सीखा है, ये नेस्ले मिल्क और ये सारे फॉर्मूला मिल्क पूतना से सीखा है। अब कृष्ण कन्हैया ने तो उसी को मार डाला। तो वी हैव टू नो जो हमको होना है, मिलना है, सब मदर विल गिव। आई हैव टू नेसल इन मदर्स हार्ट एंड इट इज फ्रॉम द अनफेदेबल डेप्थ्स ऑफ दैट हार्ट इन द स्माइलिंग पीस ऑफ इट्स बीएटीट्यूड दैट आई वॉच all the outer forms of thy manifestation, striving, endeavoring to understand and manifest thee better. वहां से मैं सब देख रही हूं और सीख रही हूं। जैसे बच्चा माँ की गोद में है, सुरक्षित है, और जो जो जीवन की चीजें वहां से सुरक्षित होकर देख रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेरा परसेप्शन बदला बंदरों के बच्चों के बारे में। मैंने देखा एक आता है वो छोटे से शॉर्ट वीडियो जिसमें एक लड़की खिलाती है बंदरों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। तो वो एक बंदर के बच्चे को ना वो दे मुझे दे केला लेके, वो साइड टर्न कर जाता है तो मैं नहीं देने वाला हूँ। वो बच्चा गोद में है अपने, बड़े आराम से, और जो जो सीखना है सिखाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं गुरु, माँ तो माँ है, गुरुओं के ऊपर है, शेरविंद भगवान है बियॉन्ड ऑल द गुरुज। गुरु तो बहुत सारे होते हैं। तो मैंने तो एक चार साल के बच्चे से एक बात सीखी थी, बड़े अच्छे मित्र का बच्चा, और मित्र भी जानते हैं अभी यहीं पर है, तो वो जा रहे थे मातृ मंदिर, बच्चे को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा आई विल लुक आफ्टर, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, सोचता था मैं बच्चों को देखभाल करने में। तो बच्चा मेरे को बहुत अच्छे से जानता है बच्चा, तो आ गया गोद, मैंने सारा कार में बिठाया बच्चे को, थोड़े चिप्स वगैरह जो भी मेरे को जो समझ आई, उन्होंने भी जो बताया वो कुछ रख लिए थे। अब वो जब तक वो जा रहे थे मातृ मंदिर, उसके दिख रहा था ना बच्चा बड़ा स्माइलिंग, चले गए गायब हो गया, आ नहीं रहे, तब रोना शुरू किया। मैंने उसको कितने चक्कर लगाए, कितनी बातें की, चिप्स कुछ खरीद दिया, कोक ले ले, वो सब जो मैं कभी ना करूं बच्चे के लिए, चॉकलेट ले ले, कोक, वो बच्चे ने जो रोया, सच में मेरे जीवन का सबसे हृदय विदारक। एक बार और मैं ये भूल कर चुका हूं, सेम मातृ मंदिर और एक बच्चे को लेके सेम चीज कर चुका हूं। मुझे ये वो बच्चा रो रो के 2 घंटे उनको आने में, क्योंकि वो प्रोसेस थी उस समय तो और भी ज्यादा थी, अभी तो फिर भी वो टोकन सिस्टम है, मुझे तो मैं तो अंत में माँ 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 मैं ही याद कर रहा था। और बच्चे ने जैसे, मैंने कहा इसके बाद तो ये बच्ची कभी मेरे पास आएगी नहीं, इसका परम शत्रु मैं हूं। आए, जैसे ही वो आए मैंने देख देख देख, तेरे मम्मी पापा आ रहे, ओ बड़ी खुश। फिर वो जैसे ही मम्मी ने गोद में लिया बच्चे को, तो मैंने जस्ट टू टेस्ट द चाइल्ड ऐसे किया, अब बच्चा स्माइल कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको पता था कि तुम शत्रु नहीं हो मेरे, पर मेरी जो परम है वो नहीं है। तो इट वॉज सच ए लेसन कि मैंने कहा ऐसा ही हमको होना चाहिए। माँ की गोद में उसको सब अच्छा लगता था, मैं भी अच्छा लग रहा हूं, वही चिप्स पसंद आ गए, तो सारे संसार में रहते हुए भी गोद तो माँ की, उसमें से निकले तो भय भय रोना, और उसमें रह के संसार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह भगवान है। इट वॉज ए लेसन। सो आई ऑलवेज से मेरा सबसे छोटा गुरु, ऐसे इससे भी छोटा गुरु हो चुके हैं, पर ये एक गुरु जिसने मुझे ये सिखाया कि देखो ऐसे रहना संसार में कि कहीं पर भी हो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन माँ का विछोह कभी नहीं होना चाहिए, माँ के हृदय में माँ की गोद में। तो माँ यही कह रही है कि कोई चीज मुझे वहां से नहीं निकाल सकती है। ये अक्सर लोग कहते हैं आश्रम के बारे में, सोसाइटी के बारे में, समाज, अरे ये कठिनाई वो कठिनाई। तो मैं कहता देखो भाई, बाहर के लोग कैसे भी हों कुछ भी हों, एक चीज मैं जानता हूं कि यहां मेरा लक्ष्य है माँ से जुड़ना, उसमें मेरे अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता है। इसमें एक ही जना है जो प्रॉब्लम कर सकता है, वह है स्वयं मैं, मेरा ईगो, और कोई बीच में नहीं आ सकता है मेरे और माँ के बीच में। कितना आप बाहर की परिस्थिति कितनी भी कर लो, आप कुछ भी कर लो एक्सट्रीम, पर यह जो चीज है आपका जो इनर लिविंग है माँ के अंदर, इसको कौन निकाल सकता है सिवा आपकी मूर्खता के। तो यहां पे माँ एंड इट इज, और वो कहती है उस हृदय की गहराई में, अनफैदमेबल, माँ के हृदय की गहराई में जाओ तो सारी सृष्टि है। वो यशोदा माँ को श्री कृष्ण दिखाया था ना अपना मुंह, तो अब यशोदा माँ भी कोई भगवान की माता है जो, तो उन्होंने कहा होगा ठहरो एक समय मैं दिखाऊंगा मेरे हृदय में क्या है। और ये सच है, ये अगर आप देखें तो राधा माँ श्री कृष्ण भगवान को कहती हैं तुमने सब करा, ये किया वो किया, लेकिन एक चीज है जो मैनिफेस्ट नहीं हुई है धरती के ऊपर। तो कहते मैंने तो सब किया, कहते नहीं तुमने तो लोगों को ज्ञान दिया और छोड़ दिया कि तुम ऐसे करना वैसे करना, सरेंडर भी तुम करना, तो फिर क्या नहीं मैनिफेस्ट हुआ है। कहते मैं चलूंगी तुम्हारे साथ और सिखाऊंगी। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण और माँ राधा के मिलन से जो धरती पर अंश अवतार प्रकट हुए थे वो थे चैतन्य महाप्रभु, विद दैट पावर ऑफ लव इन द हार्ट। तो तब वो, हम ये कह सकते हैं कि इस बार माँ यशोदा ने राधा माँ के माध्यम से बताया कि व्हाट इज माई हार्ट, और वही डिवाइन मदर के रूप में मूर्तिमान होती हैं एज द मदर ऑफ लव अबव ऑल थिंग्स। माँ के हृदय की कोई था नहीं पा सकता, अनफेदमेबल हार्ट। depths of this heart, that heart, in the smiling peace of its beatitude. खो गई है मुस्कान, यहां चले जाओ. मां की गोद में उनके हृदय में मुस्कान ही मुस्कान है. बियटिट्यूड की मुस्कान, हृदय प्रफुल्लित आनंदित उसकी मुस्कान. दैट आई वॉच ऑल द आउटर फॉर्म्स ऑफ दाई मैनिफेस्टेशन, सब कुछ मैं आप देख रही हूं. स्ट्राइविंग एंडिवरिंग टू अंडरस्टैंड एंड मैनिफेस्ट दी बेटर. जब हम प्रेम करते हैं भगवान से, उनके हृदय में समा जाते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करती है. और ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. आपस में हस्बैंड वाइफ या जो भी दो लोग, बेचारे हस्बैंड वाइफ को ही क्यों कोसो, झगड़ा करते रहते हैं. लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग थी, ये क्या हो गया? यूं हो गया कि प्यार चला गया. जब प्यार चला जाता है तो अंडरस्टैंडिंग चली जाती है. वो धरती पर अनफॉर्चुनेटली फेट है ह्यूमन लव का, ड्यूटी बन के रह जाता है. या बहुत प्यार से डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. माँ को कैसे पता होता है कि बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? वो इंटीमेसी जो है, जो प्रेम से जो समझती है, जब प्रेम होता है तो समझ आ जाता है. तो ये वहां से मैं समझ रही हूं कि क्या आवश्यक है. नए सृष्टि का कोई एल्मेनेक नहीं है, रूल बुक, स्टेप वन स्टेप टू. देयर इज ओनली वन स्टेप, लाइक क्रेडिल्ड इन द मदर्स हार्ट. फिर आगे देखिए कितना माँ अपने ढंग से हमको मुक्त करती हैं. इफ द आर हैज कम एज दाउ लेटेस्ट मी नो फॉर द न्यू फॉर्म्स ऑफ दाई रियलाइजेशन, दोज फॉर्म्स मस्ट नीड बी बॉर्न. अगर आपने निर्णय लिया है और समय आ गया है तो उनका जन्म होगा ही होगा. कैसे होगा, कौन करेगा, किस माध्यम से होगा, यू डोंट वरी. Those forms will be born. Something in the being has a presentiment but does not yet know. कहती है मुझे इतना तो पता है कि new forms आएंगे, नवीन सृष्टि आएगी, लेकिन कैसे आएगी ये मुझे नहीं पता है. 1914, देखिए माँ बिल्कुल शीघ्रता नहीं दिखाती है. 26 से प्रारंभ होती है यात्रा, 56 में एक प्रकार से एक सॉलिड काम होता है. तो वो ये नहीं कि अधीर होके नहीं, अच्छा ऐसा करना है चलो हम ये काम करते हैं. सो इट मेक्स एन एफर्ट टू अडेप्ट इट सेल्फ टू राइज टू द हाइट ऑफ व्हाट थाउ डिमांडेस्ट ऑफ इट. तो भगवान के हृदय में, मां के हृदय में निवास करते हुए हमको क्या करना है कि अगर, देखिए अडेप्ट, अगर अचानक इस समय कह दिया जाए कि चलो उठो तुमको इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो हमको अपने आप को एडेप्ट, प्लास्टिसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम वो काम कर सकें. रिजिडिटी भगवान के काम में बहुत बड़ी बात है. रिजिडिटी ऑफ आइडियाज, मेंटल नोशंस, इस तरह से उस तरह से एडेप्ट. तो मैं एक वर्ड यूज करती हैं, कोई चीज है जो एडेप्ट कर रही है और खुद को अपनी मैक्सिमम ऊंचाई तक उठा रही है ताकि जब ये आदेश हो, यदि आदेश हो, तो वो काम करने में मैं संलग्न हो जाऊं. बट दैट विच इज कॉन्शियस ऑफ दी एंड लिव्स इन दाई फोर्स नोज दैट दिस न्यू फॉर्म इज बट एन इनफिनिटेसिमल एडवांस इन द इनफिनिट प्रोग्रेशन ऑफ दाई मैनिफेस्टेशन And regards every form with the serenity of eternal plenitude. क्या विशालता में ले जा रही माँ. Even supramental manifestation, earthly realization, ये अनुभव वो अनुभव, infinitesimal, उस अनंतता के सामने. अब देखिए अगर हम कुछ क्षणों के लिए भी उस अनंतता का contemplate करें, माँ का हृदय जिसकी depths में अनंतता है, तो बाहर का जगत जिसमें हम लिप्त रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये सारा हेस्ट एंड वेस्ट. हेस्ट मेक्स वेस्ट. तो वो सारी चीजें हमारे अंदर शांत हो जाती हैं. उसी में शांति है, उसी में. एंड रिगार्ड्स एवरी फॉर्म विद द सेरेनिटी ऑफ इटर्नल पेनिट्यूड. प्लेनिट्यूड, हर चीज जैसे भरी हुई है, फुल है, तो ये एक अवस्था है, अनुभव है, रियलाइजेशन है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं और कर नहीं सकते, करना चाहिए यदि हम नवीन सृष्टि में भागीदार बनना चाहते हैं। फिर माँ कैसे हमको यूज करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी, कहेंगी नहीं तुम अंदर लेटे रहो, क्या प्रॉब्लम है, मेरी गोद में रहो, तो आपको ठीक है, आनंद। एंड इन दिस सेरेनिटी इज द वेरी ओमनीपोटेंस ऑफ रियलाइजेशन। और जब इस में हम शांत पूरी तरह, सेरेनिटी, ये वर्ड शांति से भी सरीन, जैसे हम लेक को देखते हैं ना, सेरेनिटी वर्ड और पीस, इन दोनों में एक अंतर है। पीस आपको इमोबिलिटी का स्मरण कराती है, सब चीजें एकदम इमोबाइल हो जाती हैं। सेरेनिटी पूरी शक्ति है लेकिन शांत है, शांति का एक रूप है, सीरीन है, उसके अंदर कोई शोभ नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो सेरेनिटी है। तो उस सेरेनिटी के अंदर ओमनीपोटेंस है। ये जगह जगह मां स्मरण कराती हैं कि इन पीस लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू सर्विस, यहां सेरेनिटी। जितना हम सीरीन रहेंगे, उत्तेजित होकर, उग्र होकर, शुद्ध होकर, भगवान का काम नहीं होता है। शांत, और शांति का आधार क्या है, माँ के हृदय में निवास। तो पूरी उन्होंने बता दी है, माँ के हृदय में निवास जिसमें शांति आती है, और उस शांति की अवस्था में ज्ञान आता है, उस ज्ञान की अवस्था में अनंतता प्रवेश करती है, उस अनंतता में फिर जो होना है, करना है, समर्पित भाव से वो अपने आप होता है, और तब कुछ भी असंभव नहीं है। ओमनीपोटेंस। We must know how to soar in an unshakable confidence. In the assured flight is the perfect knowledge. Yeah, flight from world nahi keh rahi hai, flight in the divine. Assured. Aur ye bahut kathin hota hai samjhana. Ek bar kisi ne mujhse pucha, ye kya baat baat mein? I just want to be in mother's lap. यानी इसको लोग एक वीकनेस के रूप में देखते हैं कि भाई ये क्या बात है, बात बात में भगवान के गोद में चले जाना, आपको तो उठ के लड़ना चाहिए। ये समझाना बड़ा कठिन होता है। जिस व्यक्ति ने पूछा था 2 साल के अंदर अंदर, अब वो व्यक्ति ऐसा कहने लगा, हाँ नाउ आई अंडरस्टैंड। ने कहा जो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि बिना, वही तो सारा कुछ है हमारा, वही तो हमारा ओरिजिन है, वही तो हमारे सारे अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, चार्ज होते हो सब कुछ, और केवल उससे बाद बाहर नहीं आते हो, उसी में रह के तुम युद्ध करते हो जीवन संग्राम में। तो माँ कहती है, वी मस्ट नो हाउ टू सोर इन एन अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। सच है, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इन द ग्रेस कहाँ पे आता है, जब आप भगवान के हृदय से, तो आपको कोई नहीं ले सकता, मृत्यु भी नहीं, मृत्यु आपके शरीर को टच कर सकती है बट इट कैन नॉट टच यू, जो सदैव उनके अंदर निवास करते हैं। इन द अश्योर्ड फ्लाइट इज द परफेक्ट नॉलेज। तो ये है मेन प्रार्थना, इसी के साथ जुड़ी थोड़ी थोड़ी कुछ लाइनें अब हम लोग देख लेंगे। June 16, 1914, इसमें मां बड़ी सुंदर, अगेन बार बार ये एश्योरेंस, कौन है जो आएंगे जुड़ेंगे, अगेन आर्टिफिशियल तरीका, इसको मैं कन्वर्ट करूं, उसको मैं मेंबर बना दूं, ये मेरा, ये नहीं करना है, ये डेंजरस है, श्री अरविंद माता जी ने इसके लिए मना किया है। तो फिर कौन आएगा, जिनको वो बुलाएंगी, और वो फिर ऐसे आएगा कि आप रोक नहीं सकते, सारा संसार उसको रोक नहीं सकता। तो यहां उसका भाव है, माँ क्या कह रही हैं, वो देख रही हैं कुछ कि आपका स्प्लेंडर जैसे सूर्य से प्रकाश वो धरती पर पड़ रहा है, लाइक ए सन thy स्प्लेंडर descends अपॉन द अर्थ एंड thy रेज विल इल्यूमिन द वर्ल्ड, ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्योर एनफ, प्लास्टिक एनफ। देखिए क्या क्या जरूरी है, यहां प्योरिटी, मॉरल प्योरिटी की बात हो ही नहीं रही है। मॉरली जो समझते हैं आई एम वेरी प्योर, वो बड़े रिजिड होते हैं गांधी जी की तरह। मॉरली भी प्योर नहीं होते, बड़े रिजिड होते हैं। मॉरलिटी ये नहीं होती है कि मैं ऐसे कपड़े पहन के देखो मेरे अंदर कोई, जिसके अंदर कोई लोभ नहीं है उसको कोई सन्यासी का वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। जो सन्यासी का वस्त्र पहन रहा है वो दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा सन्यासी हूं। जो सन्यासी है वो सर्व संकल्प सन्यासी है, गीता में ये डेफिनेशन है। उसने निज के स्वार्थ से या निज की सेल्फिश उससे एक्शन खत्म हो गया उसका। शेरविंद यूज करते हैं वर्ड एक्शन डेवलप्स, खुला हुआ है भगवान के प्रति, ओपन रिसेप्टिव, प्लास्टिक। मैं यही करूंगा, नहीं मुझे ये कुर्सी वाला काम चाहिए, मुझे ये काम नहीं करूंगा मैं। कई बार लोग सेंटर की बात करते हैं, मैं कहता हूं क्योंकि सेंटर में सब लोग बाबू वाला काम करना चाहते हैं, कुर्सी टेबल दे दो। ग्राउंड पे उतर के काम करना, कीचड़ में उतर के, मिट्टी में जाके, और उसका कितना जॉय है। आई नो दिस बिकॉज हैविंग वर्कड इन सेंटर इन दिस वे। लोग, पीपल डोंट नो व्हाट ए जॉय इट इज, पर सब चाहते कि भाई मैं उधर बैठ के कागज कलम लेकर के साइन करूं, बिल्स जो आ रहे हैं, चेक जो आ रहा है, चेयरमैन मेरा नाम हो। दैट्स नॉट हाउ डिवाइन वर्क इज डन। तो यहां पर माँ कह रही है प्लास्टिक एनफ, भगवान वहां बिठाएं तो ठीक है, पर आपको हर प्रकार का काम करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। रिसेप्टिव एनफ टू मैनिफेस्ट द वेरी स्प्लेंडर ऑफ द इटर्नल फायर ग्रुप देमसेल्स। अब ये लोग आ रहे हैं, माँ तब देख रही है 1914 में कहाँ कहाँ ग्रुप हो रहे हैं, शायद कहीं फैमिलीज में जन्म ले रहे हैं। कई सारे लोग जो आए 1903 में उनका जन्म हुआ था। अब माँ ने तो ये सब देख लिया था कि अच्छा ये आ गई है ये सोल्स, ये उस परिवार में कहीं कहीं से ग्रुप्स आए थे ऐसे। दिस इज नॉट एट ऑल आर्बिट्ररी, देखने से लगता है क्योंकि बाहर से हम समझ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि बड़े वो सन्यासी वो लेकर के आए, और अभी भी हमारे अंदर अरे वो इतना बड़ा रियलाइज सोल था, वो माता जी के पास है। इट्स नॉट टू द पर्सन क्रेडिट, इट्स द मदर्स ग्रेस। सो वो कौन आएगा, कौन नहीं इसका पार्ट बनेगा, तो माँ बता रही है दिस इज नॉट एट ऑल आर्बिट्ररी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द विल और एस्पिरेशन ऑफ वन एलिमेंट और अनदर। इट डिपेंड्स अपॉन वॉट ही इज, इनडिपेंडेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिसीशन। तो अगर कोई बोले आप कैसे आए हैं, ऐसे तो लंबी चौड़ी कहानी बनाई जा सकती है, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन सच तो ये हम आए नहीं हैं, हम बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए भाई, ये तो उनको पता है क्यों उन्होंने बुलाया है। और ये आश्रम की बात ही नहीं कर रहा हूं, इस योग में प्रवेश क्यों बुलाया उन्होंने ये हम नहीं जानते। बाहर से अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन दिख सकते हैं। पूछा एक बार निरोध दानेशी अरविंद से, अगर लोग डिसाइपल्स को देखें तो सोचेंगे ये कैसे डिसाइपल है इतने बड़े मास्टर के। शेर मजाक मजाक में कहते हैं एज टू डिसाइपल्स आई एग्री, किस्मत कहते, लेकिन जो तुम्हारी बात है कि केवल रियलाइज सोल्स लाइक स्वामी विवेकानंद उनको आना चाहिए था, तो शायद तुमको स्मरण नहीं है कि ये योग क्या है। यदि वो पहले तो वो स्वीकार नहीं करते और आते तो साधारण मनुष्यता दिखने लगती। कुछ समय पूर्व कोई कह रहा था वो इतने बड़े रियलाइज थे, वो आए थे यहाँ पे कोई मुनि और उन्होंने इतना सब कुछ किया, पर यहाँ पर नहीं टिके। वो जो भी बाहर का कारण हो, प्रेशर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी डिफिकल्ट। वो तभी संभव है जब, क्यों चले गए, क्योंकि डिवाइन मदर सॉ। अल्टीमेट रीजन वही होता है कि वन कैनॉट बेयर दिस प्रेशर। अब वो भगवान क्या देखते हैं, क्यों बुलाते हैं, बाहर से समझ एक बात है। तो माँ लेकिन स्पष्ट कह रही हैं ये इंडिविजुअल की एस्पिरेशन पे नहीं डिपेंड करता। ऐसे लोग हैं जो बरसों, हम भी आना चाहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कितने लोगों को स्वयं नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ पाते, अच्छे लोग हैं, एक दृष्टि से सिंसियर है, अपने अपने हिसाब से सभी सिंसियर है, पर नहीं आ पाते हैं। और फिर किसी को अचानक भगवान बुला लेते हैं। तो माँ कह रही है वो आ रहे हैं। Thy splendor would radiate that which is capable of manifesting it, manifest it. As simple as that. जो तैयार है, माँ से एक बार किसी ने पूछा अब सुपरमैन डिसेंड कर गया है तो किसको किसको, हम लोग ऐसा सोचते हैं अच्छा सेंटर्स के ये लोग हैं उनको पहले रूपांतरित होंगे। मां कहती है कोई भी कहीं पर भी हो सकता है, एक साइंटिस्ट हो, जो खुला है तैयार है इस नई चेतना को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट कर लिया जाए। सुपर माइंड कोई मेंटल कंसेप्शन से काम नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज सुपरा मेंटल। वो कैसे कार्य करेगा, कहां कार्य करेगा, कौन जाने कहां कौन खुला है। तो यहां पर इस सब का की बात है। एंड दीज एलिमेंट्स गैदर टू कंटेम्पलेट, टू रिकंस्टिट्यूट एज परफेक्टली एज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिविजन द डिवाइन सेंटर विच इज टू मैनिफेस्ट। आश्रम बना नहीं है, लेकिन माँ ने पहले ही कह दिया है 1914 में कि ये सारे आ रहे हैं और वो अपने आप खींचे चले आ रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और एक समय आएगा जब ये, तब वो डिवाइन सेंटर मैनिफेस्ट करेगा। आप देखिए आश्रम कैसे बना, ऐसे ही बना। 1914 की बात कर रही है, श्री अरविंद के पास लोग 11-12 जब से आए थे, कोई ना कोई 3-4 लोग 5 लोग, 1913 में 7-8 लोग होंगे, हालांकि कुछ लोकल्स आते थे कभी कभी, फिर 1914 कुछ लोग जुड़े, फिर 1918 उसके बाद इवनिंग क्लासेस, ये सब हम देखते हैं, 20 मदर आती हैं, इवनिंग क्लासेस शुरू होती हैं, कई लोग आते हैं ज्वाइन करते हैं। फिर 1926 में फॉर्मली अगर कहें कि आश्रम का बर्थ 24 नवंबर 1926 फॉर्मली, तब वो डिवाइन सेंटर की, अब ये संभव है। इस तरह से सेंटर बनता है, ये कोई आर्बिट्रेली नहीं बनता है कि चलो हम एक जगह बना देंगे, हमको अंदर में करना है। यही श्री रामकृष्ण कहते हैं ना श्री अरविंद को, 3 बार जब वो आते हैं, एक बार कहते हैं मंदिर गाढ़ो मंदिर गाढ़ो, जब वो अलीपुर जेल में, तो वो नहीं कि बाहर का मंदिर बना दो, मंदिर गाढ़ो। इसीलिए मातृ मंदिर के बारे में माँ ने बताया था, जैसे जैसे तुम प्रगति करोगे अंदर, वैसे वैसे मातृ मंदिर कंप्लीट होगा। और उन्होंने कहा जितनी जल्दी कंप्लीट हो उतना अच्छा है। और देखिए कुछ ना कुछ होता रहा, आई थिंक 40 ईयर्स इट हैज टेकन। यही चीज हर जगह लागू होती है। और फिर बस 2-4 और हम पढ़ लेंगे। अब मां आवाहन करती हैं, ये June 17, 1914, और बार बार माँ ये कहती हैं कि इस जगत को रूपांतरित करने के लिए नई शक्तियाँ चाहिए और नई, नया प्यूजा, मतलब एकदम जो राज्य शक्ति वो चाहिए, अल्टीमेट पावर चाहिए। और बार बार माँ को यही उत्तर आता है, आस्क एंड इट शैल बी। माँ को ये मैंडेट दे दिया गया है, क्या चाहिए, ये तो तुम्हारा मिशन है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास आएगा। और फिर माँ बड़ी सुंदर बात कह रही हैं, ओ दाई हार्ट सिंग्स एन हैलेलुया ऑफ ग्लैडनेस एज इफ व्हाट दाउ हैस्ट बिल्ड इज इन कोर्स ऑफ बीइंग रियलाइज्ड। ये अंदर में जो हर्ष उल्लास अनुभव करती हैं, लेट ऑल दीज एलिमेंट्स पेरिश सो दैट फ्रॉम देयर एशेज में इमर्ज न्यू एलिमेंट्स एडेप्टेड टू द न्यू मैनिफेस्टेशन। फिनिक्स वर्ड की पूरी बात, वो सब कुछ जो इस अग्नि में प्रवेश करने को तैयार है, खुद को पूरी तरह खोने को तैयार है, उसकी राख से भस्म से भगवान का अभिषेक होगा और आरती होगी। ये है भस्म आरती। भस्म आरती भी लोगों ने क्या बना दिया है, वो उठा करके वो भस्म लगा देते हैं। शिव जी कौन सी भस्म मांग रहे हैं, तुम्हारी चिता की भस्म, दूसरे की मत लाओ। और स्पेसिफिक उसमें है चिता की भस्म, आप किसी जो को जला करके भस्म नहीं बनती है, तुम्हारी चिता की भस्म। क्या तुम तैयार हो पूरा अमूल चूल मरने के लिए, उस अग्नि के अंदर प्रवेश करने के लिए, ताकि तुम्हारे अंदर कुछ भी अपना ना बचे, एशेस। तब उस भस्म से अभीप्सा, और वो है भस्म आरती। तो यहां पर मां स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि जो भी एलिमेंट्स पेरिश, पेरिश यानी समाप्त होने हैं, और उसकी राख में से नए तत्व प्रकट होंगे। तो ओल्ड कॉन्शियसनेस की डेथ, इसीलिए कई बार माँ बताती हैं स्वप्न में ये देखना कि मृत्यु हो गई है, तो ये कई बार ओल्ड कॉन्शियसनेस का समाप्त होना, पेरिश, अपनी मृत्यु को देखना। लोग परेशान हो जाते हैं, अरे क्या हुआ, उसने प्रॉब्लम किया है, लेकिन इट इज अ साइन दैट समथिंग ऑफ द ओल्ड हैज डाइड सो दैट द न्यू में इमर्ज। ये बड़ी पावरफुल प्रेयर है। ओ द इमेंसिटी ऑफ दाई ल्यूमिनस पीस, ओ द ओमनीपोटेंस ऑफ दाई सॉवरेन लव। जब पीस की बात होती तो इमेंसिटी, विशालता, ऐसे भी अगर शांति चाहिए तो विशालता में प्रवेश कर जाइए। जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं तो हमारी चेतना बड़ी नैरो होती है, एक छोटी सी चीज को लेके कीड़ा काट रहा होता है, और विशालता कुछ नहीं, पर्वतों को देखना, आकाश को देखना, फिजिकली भी उससे पीस आती है, समुद्र को देखना। तो ये इमेंसिटी ऑफ, यहाँ तो भगवान की शांति की बात हो रही है, लेकिन जब प्रेम की बात होती है तो ओमनीपोटेंस की बात होती है। प्रेम तो पीस कहाँ, प्रेम तो इंटेंसिटी है, बहा देती है, डुबा देती है, जला देती है, राख बना देती है और रूपांतरित कर देती है। गीत है ना, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो सब जग जल हो जाए। तो यहां पर ओ द इमेंसिटी ऑफ दाई ल्यूमिनस पीस, ओ द ओमनीपोटेंस ऑफ दाई सॉवरेन लव, एंड बियॉन्ड ऑल दैट कैन बी थॉट द इनएफेबल स्प्लेंडर ऑफ व्हाट वी कैन फोरसी, give us the thought, give us the word, give us the force। क्योंकि उन्होंने कहा है जो तुम्हें चाहिए पूछो। माँ धन नहीं मांग रही है, मुझे ये जमीन चाहिए, मुझे ये पहले, ये सब नहीं मांग रही है, ये तो बाद की बात है, ये बाद में आएगा, आ जाएगा। माँ कह रही give us the thought with a capital T, the supramental thought, give us the word, the power, जो स्पीच में, जो वाक, जो मनुष्य के अंदर स्पंदन, दैट सुप्रीम वर्ड, गिव अस द वर्ड, गिव अस द फोर्स, ये तीन चीजें चाहिए। एंटर इनटू द एरेना ऑफ द वर्ल्ड ओ न्यू बॉर्न अननोन, फिर वो आह्वान करती है कि संसार में अभिव्यक्त हो, प्रकट हो, प्रवेश करो, न्यू बॉर्न, जिसको कोई नहीं जानता। अब तक जितने भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रियलाइजेशन हुए, नन ऑफ देम नो अबाउट दिस, क्योंकि उन सबके परे है। तो मां कहती है न्यू बॉर्न अननोन। यही रुकेंगे हम लोग, होपफुली नेक्स्ट संडे वी विल मीट अगेन। जय माँ।